cuerdas. तो केवल दस, ठीक है। तावत यात भुवम योयम ब्रह्मक्षत्र समेधिताम सुधयध्वम तपः यज्ञ स्वाध्याय व्रत दानिन तावत्यात भुवं युयं ब्रह्मक्षत्र समेधिताम् सुदयध्वं तपोयज्ञ आध्याय व्रतदानिन तावत्यात भुवं युयं ब्रह्मक्षत्र समेधिताम् सुदयध्वं तपोयज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनः तावत्यात भुवं युयं ब्रह्मक्षत्र समेधिताम् सुदयध्वं तपोयज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनः जी तावत जब तक मैं विष्णु के मारने में व्यस्त हूं यात जाओ भुवम पृथ्वी लोक में योयम तुम सब ब्रह्म क्षत्र ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का समेधिताम कर्मों ब्राह्मण संस्कृति तथा वैदिक शासन कर्मों द्वारा संपन्न बने हुए सुदयध्वं विनष्ट कर दो तपः तपस्या करने वालों का यज्ञ यज्ञ स्वाध्याय वैदिक ज्ञान का अध्ययन व्रत अनुष्ठान संबंधी प्रतिज्ञाएं दानिनः तथा दान देने वालों का अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जब तक मैं भगवान विष्णु के मारने के कार्य में लगा हूं तब तक तुम लोग पृथ्वी लोक में जाओ। जो ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय शासन के कारण फल फूल रहा है ये लोग तपस्या यज्ञ वैदिक अध्ययन अनुष्ठानिक व्रत तथा दान में लगे रहते हैं। ऐसे सारे लोगों को जाकर विनष्ट कर दो। तात्पर्य, हिरण्यकशिपु का मुख्य उद्देश्य देवताओं को विचलित करना था। उसने सर्वप्रथम भगवान विष्णु को मार डालने की योजना बनाई जिससे विष्णु की मृत्यु होने पर सारे देवता स्वतः निर्बल होकर मर जाएंगे। उसकी दूसरी योजना पृथ्वी के वासियों को सताने की थी। पृथ्वीवासियों की शांति तथा समृद्धि ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा स्थिर रखी जाती है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, चातुर्वर्णे मया सृष्टम गुणकर्म विभागश। प्रकृति के तीन गुणों तथा उनके नियत कर्म के अनुसार मानव समाज के चार वर्णों की सृष्टि मेरे द्वारा की गई है। सभी लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार के वासी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मनुष्यों द्वारा निवसित पृथ्वी लोक के प्रसंग में वे संस्तुत करते हैं कि समाज चार वर्ण वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र में विभाजित किया जाए। इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व ऐसा जाना जाता है कि यह पृथ्वी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा व्यवस्थित होती थी। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह शमः शांति, दमः आत्मसंयम, तितिक्षा सहिष्णुता, सत्यम सच्चाई, शौचम स्वच्छता तथा आर्जवम सरलता का संवर्धन करे और तब क्षत्रिय राजाओं को सलाह दे कि देश या लोक पर किस तरह शासन किया जाए। ब्राह्मणों के उपदेशों का पालन करते हुए क्षत्रियों को चाहिए कि वे जनता को तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय तथा वैदिक अनुष्ठानों में दृढ़ बनने के लिए प्रवृत्त करें। उन्हें ब्राह्मणों, सन्यासियों तथा मंदिरों का दान देने को भी की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ब्राह्मण संस्कृति का यह दैवी निधान है। तो तात्पर्य लंबा है, अनुवाद। जब तक मैं भगवान विष्णु के मरने के कार्य में लगा हूँ, तब तक तुम लोग पृथ्वी लोक में जाओ, जो ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय शासन के कारण फल फूल रहा है। ये लोग तपस्या, यज्ञ, वैदिक अध्ययन, अनुष्ठानिक व्रत तथा दान में लगे रहते हैं। ऐसे सारे लोगों को जाकर विनष्ट कर दो। तो श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में जो 10 अध्याय, प्रथम 10 अध्याय में नरसिंहदेव का वर्णन कम अध्यायों में है, हिरण्यकश्यपु के कार्यकलापों का वर्णन 6 से 7 अध्याय में है। तो हो सकता है मन में प्रश्न उठे कि ऐसे नकारात्मक प्रसंग को इतना अधिक समय क्यों दिया, और वो भी इतने बड़े विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी जैसे महासंत जो कि निरंतर राधाभाव में लीन रहते हैं, उनको हिरण्यकश्यपु की गतिविधियां इतनी आकर्षक क्यों लगी कि इतना उन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन किया, जिसको सुनकर कलयुग के लोग भी लज्जित हो जाते हैं। तो भागवत के 10 मुख्य विषय हैं, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उतय मनवंतर ईशान तथा विरोध निरोध मुक्ति राश्रय। तो इसमें जो निरोध है, उतय है, उती, ये सप्तम स्कंद का विषय है, और उती शब्द का अर्थ है कि शुभ अशुभ इच्छा। तो श्रीधर स्वामी उतय का परिभाषा देते हैं, शुभ अशुभ इच्छा। तो हृदय के सतह में प्रत्येक जीव के विविध प्रकार की इच्छाएं प्रवृत्त होती हैं, तो शुभ इच्छाओं का परिणाम शुभ होता है और अशुभ इच्छाओं का परिणाम अशुभ होता है। और कोई अशुभ इच्छाओं से प्रेरित होकर यदि इस जगत में हिंसात्मक कार्य करे, उसका महाभयंकर परिणाम, दुष्परिणाम होता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए विस्तृत रूप में हिरण्यकश्यपु के इन बातों को, उनके कार्यकलापों को विशेष स्थान दिया गया है, जिससे कि हम लोग इनको पढ़कर, सुनकर समझ जाएं, ये मुझे नहीं करना है। तो इसलिए भागवत में दोनों प्रकार से हम लोग को शिक्षा दी गई है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस प्रकार के करतूत हमें नहीं करना है। अगर ऐसे हिंसात्मक कार्य हम वैष्णवों के विरोध में करेंगे, तो चाहे कितने ही महातपस्वी तेज से प्रवृत्त अगर हम लोगों को तेज प्राप्त हुआ हो, वरदान प्राप्त हुआ हो, विविध प्रकार के शक्तिशाली सत्ताओं से आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो, उन सभी वरदानों को प्राप्त करके भी विनाश निश्चित है। निर्वैराय प्रशांताय, స్వసుతాయ మహాత్మనే ప్రహరాదాయ యదా దుర్హ్యేత్ హనిష్యేపి వరోర్జితం. తో ఇసలియే వివిధ ప్రకార కే వరదాన్ బ్రహ్మాజీనే హిరణ్యకశిపు కు దే దియే తో సారే దేవతాగణ్ బేచారే బడే పరేషాన్ థే కి అబ్ క్యా హోగా, యే తో అమర్ హో గయే. తో భగవాన్ విష్ణునే ఉన్కో సాంత్వనా ది కి భలే ఇన్కే అందర్ ఇత్నీ శక్తిశాలి వరదాన్ ప్రాప్త హే, లేకిన్ ఉస్ సమయ తక్ ఇస్కా కోయి బాల్ బాకా నహీ కర్ పాయేగా జబ్ తక్ యే అప్నే పుత్ర మహావైష్ణవ్ ప్రహ్లాద్ కే ప్రతి అపరాధ్ న కరే. నిర్వైరాయ శ్రీ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ బినా కిసీ వైరే కే హే. నిర్వైరాయ ప్రశాంతాయ జోకి హర్ ప్రకార్ కే భౌతిక ఇచ్ఛావ్ సే శూన్య ఉన్కా హృదయ. స్వసుతాయ మహాత్మనే అప్నే పుత్ర కే ప్రతి దుర్వ్యవహార్ కర్నా తో అప్నే ఆప్ మే ఏక్ పాప్ కార్య హే హీ, లేకిన్ ఐసే మహాత్మా పుత్ర కే ప్రతి అగర్ కోయి ఇస్ ప్రకార్ కా వ్యవహార్ కరే తో కితనా బడా అపరాధ హే. ప్రహరాదాయ యదా ద్రుహ్యేత్ జబ్ ప్రహరాద్ కే ప్రతి జబ్ వో ద్రోహ్ కరేగా హనిష్యేపి తబ్ ఉస్కా వినాశ్ నిశ్చిత్ హోగా. హనిష్యేపి వరోర్జితం మహాన్ అలగ్ అలగ్ వర ప్రాప్త కర్నే పర్ భీ ఉస్కా వినాశ్ నిశ్చిత్ హోగా. తో ఇస్లియే వైష్ణవ అపరాధ కా పరిణామ బడా ఘాతక్ హోతా హే ఔర్ ఇస్ అపరాధ కా భీ విస్తృత రూప్ సే ప్రదర్శన్ కర్నే విజ్ఞాపన్ కర్నే భగవాన్ నరసింహదేవ్ ప్రకట్ హువే కి అగర్ మేరే మహావైష్ణవ్ కే ప్రతి కోయి అపరాధ కరేగా తో మే ఇస్ రూప్ మే ప్రకట్ హో జాతా హూ జో కి పూర్వ కాల్ మే కభీ కిసీ నే దేఖా నహీ. తో ఇసలియే యే హిరణ్యకశిపు కే ప్రసంగ సే హమ్ దేఖ్ సక్తే హై కి హిరణ్యకశిపు కే అందర్ ఇత్నీ శక్తి ఇత్నీ సత్తా థీ ఔర్ తప్ కర్నే కా ఐసా బల్ థా కి వో లాఖో లాఖో వర్షో తక్ బినా జల్ పియే వో తప్ కర్ రహే థే. ఉన్కే తపస్యా కే బల్ కే సామ్నే హమ్ లోగ్ కుచ్ భీ నహీ హై. జన్మాష్టమి కా ఏక్ దిన్ కే హమ్ లోగ్ కా నిర్జలా మే హాలత్ ఖరాబ్ హో జాతీ హై. ఏక్ బార్ హమ్ లోగ్ కా జన్మాష్టమి మే లెక్చర్ చల్ రహా థా ఔర్ హమారే రాధానాథ్ మహారాజ్ బహుత్ లంబా లెక్చర్ దే రహే థే. 3-4 ఘంటా లెక్చర్ చలా, 5 ఘంటా లెక్చర్ చలా ఔర్ లెక్చర్ కే బాద్ జబ్ లెక్చర్ సమాప్త్ హువా 4-5 ఘంటే కే బాద్ సభీ బ్రహ్మచారి ఆ గయే ఆశ్రమ్ మే ఔర్ కుచ్ లోగ్ వహాన్ పర్ ఆశ్రమ్ మే బిల్కుల్ లేట్ గయే, బిల్కుల్ ధడామ్ సే గిర్ గయే, थक गए हो. तो महाराज घूमते हुए आए और मैं भी उनको देखकर प्रेरित होकर लेट ही रहा था. ऐसे कार्यों में अधिक प्रोत्साहन नहीं लगता प्रेरणा प्राप्त करने का. तो मैं नीचे गिर ही रहा था तभी अचानक महाराज आके बोले क्या चल रहा है, मेरे लेक्चर का ये प्रभाव है क्या? तो मैंने कहा क्या है कि निर्जल है तो सब लोग थोड़ा भयभीत रहते हैं कि रात तक ऊर्जा कैसी बनी रहेगी, तो थोड़ा एनर्जी सेविंग चल रहा है. तो महाराज ने कहा कि मैं इतनी कृष्ण लीला सुनाया 4-5 घंटे और ये लोग महाविष्णु लीला कर रहे हैं. तो सोचिए इतना हम लोग व्रत लेकर दीक्षा लेकर ये करके भी ऐसी तपस्या कभी नहीं कर पाएंगे कि दीर्घ काल तक बिना जल के रह लिए, वायु का भी गति को रोक लिया, ये कर लिया वो कर लिया. तो इसलिए यहां पर ये बतला रहे हैं कि इतने शक्तिशाली वो हैं और भोग की इतनी सामग्री उनके पास थी. स इत्थम निर्जित ककूप एकराण विषयान प्रियान यथोपजोषम भुंजानो न अतृप्यत अजितेंद्रिय. हिरण्यकश्यपु जिस दिशा में जिस विषय को देखता वो विषय वस्तु उसके लिए भोग के लिए उपलब्धि सुलभ थी. तो सोचिए इस भौतिक जगत में भोग की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कितना दिन रात कर्मठ प्रयास करना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए सब कुछ सुलभ था. जहां देखा जो कुछ देखा जिसके प्रति उसका मन लग गया वो उसका हो गया. तो किसी को लगेगा अरे इसका तो लाइफ बन गया और क्या चाहिए, और चाहिए ही क्या. तो भौतिकवादी व्यक्ति की तो ये वास्तविक कामना है, बहुत बड़ा स्वप्न है। तो स इत्थम निर्जित ककूप, चारों दिशाओं में कोई उसको जीत नहीं पाया। तो हर प्रकार के सुख में अहंकार का सुख सर्वश्रेष्ठ होता है, और ऐसे अहंकार का उसको सुख था कि मेरे सामने तो 14 लोक में कोई है ही नहीं, है कि नहीं। तो उस भाव में वो घूमता था एक राट। और सबसे बड़ा उसका सुख क्या था कि पूरे ब्रह्मांड में मैं ही अद्वितीय हूं, सबसे बड़ा राजा हूं, मेरे बल के सामने सब झुकेंगे, विषयान प्रियान। और विषयों का बड़ा वो लालायित था, लालची था। यथोपजोषम भुंजानो, जो चाहे वो भोग कर लेता था। लेकिन इतनी भोग की सामग्री सुलभ होने पर भी उसका मनोभाव क्या था, उसके मन के आंतरिक विचार क्या थे, न अतृप्यत, उसको तृप्ति प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए कहते हैं जो भगवान के संबंध में न हो, उन विषयों का भोग करके स्वाद की अनुभूति हो सकती है, लेकिन तृप्ति की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि स्वाद और तृप्ति में बहुत बड़ा अंतर है। अपने स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर जब इंद्रियां विषयों के साथ संपर्क करती हैं तो स्वाद की अनुभूति होती है, नेत्रों से, जिह्वा से, कर्णरंध्रों से, जो भी हो। लेकिन जब भगवान के संतोष के लिए निस्वार्थ भाव से, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव से प्रेरित होकर जब हम कोई कार्य करें, तब विषयों को, विषय हमारे जितने भी इंद्रिय हैं उनको तृप्ति की अनुभूति होती है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विषय विषम विष सतत खाइनु, गौर कीर्तन रसे मगन न होइनु। ये जितने विषय भोग हैं ये विष की भांति घातक हैं, भयावह हैं। तो इसलिए विष और विषय में कौन अधिक भयावह है, कौन अधिक घातक है, कौन अधिक शक्तिशाली है? विषय अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि विष केवल हमारे आत्मा को शरीर से अलग करता है, लेकिन विषय हमारी आत्मा को कृष्ण से, परमात्मा से अलग करता है। तो इसलिए गौर कीर्तन रसे मगन न होइनु, भगवान श्री कृष्ण के, श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में चित्त आविष्ट नहीं हो सकता। इसलिए ना तृप्यत अजितेंद्रिय, हिरण्यकशिपु विषय भोगों में पूरी तरह लीन था, विषय के सागर में गोते लगा रहा था, लेकिन तृप्ति की अनुभूति नहीं हुई थी, वो पूरी तरह अतृप्त थे। तो इसलिए श्रीमद् भागवत के विविध स्कंधों में कई लीलाओं का ऐसा वर्णन आता है जिससे जीव के अंदर, बद्ध जीव के अंदर विषय भोग के प्रति जो एक आशावादी भाव होता है कि हाँ भाई ये विषय मुझे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जब प्राप्त होगा तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसे मन में एक विचार आता है, अरे उनको प्राप्त हो गया ये भोग, मुझे नहीं प्राप्त हुआ, जिस दिन मुझे प्राप्त होगा मेरे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, हो सकता है जगत ही वैकुंठ हो जाए, ऐसा कभी मन में विचार उछल सकता है। एक बार एक नवयुवक को मैं, हम लोग कॉलेज का प्रोग्राम चल रहा था, जामिल की मैंने कथा सुनाई, तो लेक्चर के बाद वो सज्जन मेरे पास आया, बोलते हैं कि मेरे जीवन का महाजन तो अजामिल है। तो मैंने कहा ऐसी क्या प्रेरणा प्राप्त हो गई आपको अजामिल से? वो बोले क्या उसने अपना लाइफ का बैलेंस किया, मजा भी किया और वैकुंठ भी गया। तो हो सकता है अपने मन में ऐसी आशा हो कि चलो भाई इस भौतिक जगत को भोगा भी जा सकता है और भक्ति भी की जा सकती है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। लेकिन वास्तव में ऐसी कथाओं के माध्यम से, जैसे हिरण्यकशिपु का चरित्र वर्णन किया गया है, तो अंत में उसका क्या परिणाम हुआ और वास्तव में उसके मन में भाव क्या था, तृप्ति नहीं थी, न अतृप्यत अजितेंद्रिया। इसलिए अपराध शब्द का अर्थ भी यही होता है, राड जो है, राड का अर्थ होता है संतोष या तृप्ति, अपराध का अर्थ होता है कि शनै शनै वो संतोष की भावना, वो तृप्ति की भावना जब घटे, समाप्त हो, तो उसको कहते हैं अपराध। अर्थात भक्ति के बाह्य कार्यकलाप हमारे चलायमान हैं, लेकिन उस भक्ति के कार्यों के द्वारा जो हृदय के भीतर तृप्ति और संतोष की अनुभूति होनी चाहिए, उसका अनुभव जब न हो तो समझना चाहिए कि अपराधों का आक्रमण हमारे हृदय पर बहुत भयावह रूप से प्रबल है। इसलिए अपराध, एक और परिभाषा देते हैं कि जो राधा रानी से हमें दूर करे, अर्थात आराधना, कृष्ण की आराधना, भगवान की सेवा से जो हमें दूर करे, वो भी है अपराध। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि यहां पर भगवान श्री विष्णु हिरण्यकश्यपु के विनाश के विषय में बता रहे हैं कि प्रहरादाय यदा द्रुह्येत हनिष्येपि वरोर्जितम्। जब प्रहराद के प्रति वो आक्रमण करेगा, अत्याचार करेगा, तो कितने भी उन्होंने आशीर्वाद पाए हो, वर पाए हो, लेकिन उनका नाश निश्चित है। तो इसलिए श्रीपाद रामानुजाचार्य जो हमारे वैष्णव आचार्यों में हैं, उन्होंने अपने टीकाओं में अलग अलग वैष्णव अपराधों का वर्णन किया है कि कैसे भक्ति के क्षेत्र में, मार्ग पर हमें इन अपराधों से बचना चाहिए। तो उन्होंने 12 प्रकार के वैष्णव अपराध का वर्णन किया है, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, पूरा 12। तो यह किस लिए किया है? प्रेरणा देने के लिए नहीं कि हम इस प्रकार के भी करें, हमको सचेत करने के लिए कि कितना ये सूक्ष्म बात है। तो पहले अपराध को नाम देते हैं जन्म निरूपण, कि किसी वैष्णव को देखकर और उसके जन्म के आधार पर यदि हम उसके प्रति कुछ विचार व्यक्त करें तो वो एक अपराध हो जाता है। क्योंकि किराट हुनांदर पुलिंद पुलकश अभीर शुंब यवन खसादे ये नियच पापा यदपाश्रयाशे शुद्ध्यंति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। भागवत वर्णन करता है कि ये भक्ति इतना शक्तिशाली है कि कोई भी किसी भी क्षेत्र में हो, पूरे विश्व के किसी भी कोने में हो, भक्ति के माध्यम से शुद्ध हो जाता है। यह नाम धैय श्रवणानुकीर्तनात् यह प्रवरणात् अपि क्वचित् श्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते। तो माता देवहूति कपिल देव को कह रही है कि आपके नाम के संकीर्तन से, नाम के शक्ति से श्वादोपि सद्य, जो मांस भक्षी है वो भी तुरंत ही सवनाय कल्पते, यज्ञ करने के लिए तैयार हो सकता है। कुतः पुनः किम भगवन्नु दर्शनात्। तो इसलिए जब हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु को भेंट किए तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि हरिदास ठाकुर इतने नम्र थे कि वो इतना नाम करने पर भी महाप्रभु से दूर जा रहे थे। वो कह रहे थे मेरी योग्यता नहीं है। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपनी बलिष्ठ भुजाओं से आलिंगित किया और कहा कि क्षण क्षण कर तुम्हें सर्व तीर्थेर स्नान, क्षण क्षण कर तुम्हें यज्ञ तपोदान। अरे वास्तव में आप सबसे बड़े महात्मा हो, क्योंकि क्षण क्षण आप नाम ले रहे हो, और क्योंकि नाम की इतनी शक्ति है, आपका हृदय कितना शुद्ध है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से उनको इस प्रकार आलिंगन किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि विशेष रूप से हरिदास ठाकुर और रामानंद राय इत्यादि को शक्ति प्रदान की, क्योंकि वो दिखलाना चाहते हैं कि भक्ति इतना शक्तिशाली है कि किसी स्थान में, किसी समय, किसी के अंदर भी वो प्रवृत्त हो सकता है। इसलिए वृत्रासुर को महात्मा कहा गया है। असुर के पुत्र प्रहलाद वो कितने बड़े महात्मा निकले। तो भक्ति कहां भी प्रकट हो सकती है, अहेतु की अप्रतिहत्या ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो इसको कहते हैं जन्म निरूपण। दूसरा है शरीर निरूपण। शरीर निरूपण का अर्थ है कि किसी के शारीरिक विकारों को देखकर अगर मन में विचार आए कि ये कैसा डिवोटी है, ये कैसे वैष्णव है, तो प्रसंग आता है कि जब रूप गोस्वामी पाद जब वृंदावन में थे तो उस समय एक ब्रजवासी वहां आए और उनको पैर में कुछ कष्ट था, ठीक से चल नहीं पा रहे थे, अपाहिज थे। और रूप गोस्वामी पाद उस समय ध्यान में थे और वो देख रहे थे ध्यान में राधा कृष्ण की लीला कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को ऊपर उठाए हैं और श्रीमती राधा रानी कुछ फूल तोड़ रही है पेड़ से और वृक्ष की डाली को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से फूल तोड़ रही है। और तब अचानक कृष्ण राधा रानी को छोड़ देते हैं तो घबरा कर राधा रानी दोनों हाथों से उस डाली से लटक जाती है और इसको देख के कृष्ण हंसने लगते हैं और ये ध्यान करते हुए रूप गोस्वामी पाद हंसने लगते हैं और उनको हंसता हुआ देखकर ये ब्रजवासी को लगता है कि मेरे इस लंगड़ी चाल को देखकर शायद वो हंस रहे हैं। और उनके मन में ऐसा भाव आया, उनको बुरा लगा, जो भी हुआ वो वहां से चले गए। अचानक वो जो छवि थी वो नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। रूप गोस्वामी पाद विचार करने लगे। सनातन गोस्वामी पूछा कि क्या हो गया, कहीं कुछ समस्या हो गई क्या, भगवान की इतनी अच्छी छवि चल रही थी, लीला चल रही थी, अचानक गायब हो गया। तो सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि हो सकता है कुछ अपराध हो गया हो, कोई वैष्णव संतुष्ट होंगे, तो कैसे पता लगाएं। तो सनातन गोस्वामी पाद बड़े विद्वान थे, प्रधानमंत्री रह चुके थे, प्रधानमंत्री वित्त मंत्री दोनों रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी सबसे उत्कृष्ट जो मंत्री पद पर थे वो सब तिरस्कार करके वो संत महात्मा बने थे। तो जानते थे अलग अलग समस्याओं का समाधान कैसे हो। तो सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि एक भंडारा घोषित करो और भंडारा में पूरे ब्रज के सभी संतों को बुलाओ, सभी लोगों को बुलाओ, और तब जो संत नहीं आएंगे समझ जाना चाहिए कि वो हमारे साथ उनका कुछ जो है मनमुटाव हो गया है कि नहीं। तो 500 साल पहले इस प्रकार की संस्कृति थी, आजकल पता नहीं काम होगा कि नहीं, किसी का मनमुटाव होगा पहले फीस्ट खा लेगा फिर भूलेगा लेकिन उस समय ये फॉर्मूला चलता था। तो बड़ा उन्होंने फीस्ट घोषित किया और तुरंत मालूम पड़ा कौन नहीं आए, जाके फिर उनसे उन्होंने क्षमा याचना की। तो एक दृष्टि से देखा जाए डायरेक्ट भी उन्होंने तिरस्कार नहीं किया था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया था, परोक्ष रूप से केवल उस सज्जन ने इस प्रकार समझा तो फिर भी उसका ऐसा प्रभाव पड़ा। तो इसलिए यह समझना बड़ा आवश्यक है। साउथ अफ्रीका में एक रथ यात्रा प्रभुपाद जी कह रहे थे वहां के एक भक्त को जो लीडर थे वहां के कि रथ यात्रा करो, रथ यात्रा करो। तो वो लीडर कह रहे थे कि प्रभुपाद जी यहां पर भक्त कम है कि नहीं, यहां पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं, इनकी सेवा पूजा करनी पड़ती है, इसमें एक पूजा में ड्रेसिंग में इसमें उसमें बहुत टाइम जाता है कि नहीं, तो इसलिए हमारे पास कोई समय ही नहीं है ये सब रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करने का, दिन रात केवल ड्यूटी वर्शिप में ही जाता है। तो प्रभुपाद जी ने चिट्ठी लिखी उनको, हाँ अरे गौर निताई की सेवा पूजा कर रहे हो, अरे महाप्रभु तो सबसे कृपालु हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाप्रभु की आप सेवा पूजा कर रहे हो, ये तो सबसे कृपालु हैं, आपको क्या लगता है कि इतना कष्ट होता है सेवा पूजा में, नहीं उनकी सेवा करनी हो महाप्रभु इतने कृपालु हैं कि एक व्यक्ति भी काफी है उनकी सेवा के लिए, एक व्यक्ति क्या, अगर एक व्यक्ति का एक हाथ भी अगर काम कर रहा नहीं हो तो एक हाथ से भी वो सेवा स्वीकार कर लेंगे। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने लिख दिया। और बाद में डेट्रॉइट मंदिर में एक भक्त ज्वाइन हुए जो एक हाथ से अपाहिज थे और केवल उनका एक हाथ ही चलता था और कई साल तक वो डेट्रॉइट में पुजारी बन के वो कार्य किए। तो वास्तव में भक्तों ने देखा कि एक हाथ से भी वो पूजा लगातार कई कई वर्षों तक किए। तो इसलिए चाहे शारीरिक दृष्टि से कोई दोष क्यों न हो, किसी प्रकार के सेवा में क्षति नहीं हो सकती। तीसरा है भाव निरूपण। भाव निरूपण का अर्थ है कि एज, किसी को लगे कि ये तो छोटा सा बच्चा है, ये क्या भक्ति करेगा, है ना। तो अगर ध्रुव महाराज 5 वर्ष की आयु में इतने बड़े भक्त बन गए, और हमारे प्रहलाद महाराज भी 5 वर्ष की आयु में, नारद मुनि भी, तो कम आयु में भी कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है कि नहीं। तो जब नारद मुनि के माता का देहांत हुआ, तो वास्तव में इतना बड़ा घातक विषय था ये कि माता के ऊपर पूरी तरह उनका अवलंबन था, और जिन पर आश्रय था वही चले गए, तो अब वो क्या करेंगे। लेकिन जैसे ही उनका निधन हुआ, तुरंत नारद मुनि उत्तर दिशा की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने महात्माओं से श्रवण किया था कि भागवत का आश्रय लेना चाहिए, भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। तो इसलिए कम आयु में भी अगर कोई भक्ति कर रहा हो, तो यह विचार नहीं करना चाहिए कि इसके अंदर ये शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं। एक प्रभुपाद जी का एक प्रसंग आता है कि कुछ पंडित लोग प्रभुपाद जी को मिलने आए, और उस समय प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि भगवान कौन है बताइए। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, ये तो वेदों के अध्ययन के बाद बहुत समय के पश्चात इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। भगवान कौन है, इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल नहीं है। तो समीपवर्ती कुछ गुरुकुल के बच्चा एक खेल रहा था, प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया, और प्रभुपाद जी के टेबल के ऊपर कुछ लड्डू रखे थे, और वो कांच का पूरा बक्सा था। तो कांच का वो बॉटल था, उसके अंदर स्पष्ट दिख रहा था कि लड्डू है। प्रभुपाद जी ने हाथ अपना उस बक्से के ऊपर रख दिया, और बच्चे को पूछा, बता बेटा भगवान कौन है। तो बच्चे ने प्रभुपाद जी का प्रश्न सुना, और फिर देखा प्रभुपाद जी का हाथ कहां पे है, बिल्कुल इतने सारे भरे हुए लड्डू का बक्सा के ऊपर है। तो उसको लगा कि अगर मैं उत्तर दूंगा तो भविष्य बड़ा उज्जवल है, तो पूरा उत्साह आ गया उसको, बोलता है कृष्ण है। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत लड्डू निकाल के दिया। फिर प्रभुपाद ने पूछा, बता बेटा कृष्ण कौन है। तो फिर उसने देखा कि एक और उत्तर दूंगा तो और मिलेगा, तो उसने कहा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रभुपाद जी ने कहा ये लो और जाओ खेलो। और फिर प्रभुपाद जी दोनों पंडित को देख के बोलते हैं, देखिए हमारे इस्कॉन में बच्चा भी जानता है भगवान कौन है। तो फिर वो पंडित लोग बोले प्रभुपाद को, लेकिन स्वामी जी ये बच्चा ये नहीं जानता कि कृष्ण भगवान कैसे हैं, वो नहीं जानता। तो प्रभुपाद ने कहा, वो तो कृष्ण खुद नहीं जानते कि वो भगवान कैसे हैं, क्योंकि जब तक उनकी भगवत्ता के विषय में उनको आभास होने लगता है, उनकी भगवत्ता और बढ़ जाती है। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने वास्तव में हर प्रकार से योजना बनाई कि चाहे कोई शिशु भी क्यों न हो, उसको भक्ति के हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध हो, फ्रॉम वूम टू टूम। तो इसलिए भाव निरूपण। चौथा है आश्रम निरूपण, अर्थात कोई किसी आश्रम में स्थित है, उसके कारण उसके प्रति कोई मन मुटाव हो। तो कई बार इस प्रकार विवाद होता रहता है कि ये आश्रम श्रेष्ठ है, वो आश्रम श्रेष्ठ है, लेकिन वास्तव में चाहे कोई किसी भी आश्रम में क्यों न हो, वास्तव में भगवान की भक्ति हर आश्रम में संभव है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य से कहने लगे कि नीलाचल आसी ना तुम्हार प्रसादे, तो कृपा करके आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्यों? गृहे कृष्ण भजी मोर कोर आशीर्वादे, आप घर में कृष्ण का भजन करते हो इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। नीलाचल आसी ना तुम्हार प्रसादे, आपकी कृपा से मैं नीलाचल वापस लौट के आ सकूं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये तो उल्टी गंगा बह रही है, सन्यासी गृहस्थ का आशीर्वाद ले रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर कोई भक्ति में पूरी तरह संलग्न हो जाए तो वास्तव में उनके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो चाहे किसी भी आश्रम में क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की शक्ति हरेक के अंदर है। यूयम लोके बत भूरी भागा लोकम पुनानाम मुनियो वियंति येषाम ग्रहाणाम वसते ति साक्षात गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। तो नरसिंहदेव के कथा सुनने के पश्चात युधिष्ठिर महाराज के मन में एक संकोच का भाव था कि भगवान श्री कृष्ण ने इतनी कृपा पांडवों के ऊपर बरसा दी, नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज के ऊपर बरसा दी, लेकिन हम पांडव अयोग्य रहे, इस प्रकार की कृपा क्या एक विशेष अवतार विशेष रूप धारण करके प्रहलाद को संतुष्ट किया, क्या भगवान श्री कृष्ण की कृपा का वैभव है? ऐसा वो विचार कर रहे थे और मन में संकोच की भावना थी कि हम अब क्या कर सकते हैं। तो नारद मुनि उनके मन के भाव को जानकर उनको प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि यूयम लोके बत भूरि भागा लोकम पुनानाम मुनयो वियंति। अरे युधिष्ठिर महाराज, आप ये ना सोचिए कि प्रहलाद आपसे श्रेष्ठ हैं या आप किसी प्रकार से कम हो। क्यों? क्योंकि जहां पांडव लोग, आप हस्तिनापुर में, आप अपने राजमहल में इंद्रप्रस्थ में रहते थे, लोकम पुनानाम मुनयो, जो पूरे विश्व को लोक को पावन करने वाले ऋषि मुनिगण जो भीषण तपस्याओं में लीन रहते हैं और जो वन के भीतर ही पाए जाते हैं, वो अपने एकांत अवस्था को त्याग कर निरंतर आपके राजमहल में विचरण करने आते हैं। क्यों आते हैं? येषां गृहाणां वसते इति साक्षात, क्योंकि आपके राजमहल में, आपके संगमरमर से लदे हुए महल में कौन रहता है? यूयम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। भगवान श्री कृष्ण गुण रूप में एक सामान्य मनुष्य की भांति लीला करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम शक्तिशाली ज्ञान घन आनंद घन भगवान आपके साथ लीला प्रसारण कर रहे हैं, उसका दर्शन करने, ऐसी कृपा वृष्टि के कुछ बिंदु को प्राप्त करने के लिए इतने बड़े बड़े वैरागी संतगण निरंतर आपके आश्रम में आते हैं, आपके महल में आते हैं। तो सामान्यतया महल में, प्रासाद में रहने वाले लोग जाके मंदिरों में भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जितना यादवों के साथ समय नहीं बिताया, उससे अधिक पांडवों के साथ समय बिताया। क्यों? क्योंकि पांडवगण निरंतर सारथ्य पार्षद सेव न सक्य दौत्य वीरासनानुस्तवन स्तवन प्रणामान स्निग्धेशु पांडुषु जगत प्रणतिम च विष्णु भक्तिम करोति नृपतिश चरणारविंदे। क्योंकि पांडवों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक स्वाभाविक स्नेह था, अनुराग था, कि भगवान श्री कृष्ण कुछ विचार व्यक्त करने से पूर्व पांडवगण उसको पूर्ण करने के लिए तैयार थे। तो इसको कहते हैं स्नेह। और जब कोई अपने हृदय में भगवान के विचारों को अपनाकर साकार कर आंतरिकरण करके उसको अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो जाए, इस उत्साह को देखकर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए भक्ति एक हृदय के आंतरिक भाव है और उसको हम क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो इसलिए चाहे कोई किसी भी आश्रम में क्यों न हो, वो हर प्रकार से भगवान की सेवा व्यक्त कर सकता है और इसमें कोई श्रेष्ठ या निकृष्ट का भाव कभी मन में नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए यहां पर इसको कहा है आश्रम निरूपण। और श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ जब विश्व का भ्रमण किए तो उन्होंने कई लोगों को गृहस्थ में, गृहस्थ आश्रम में आदेश किया कि आप लोग जाइए और प्रचार कीजिए और इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाइए। तो प्रभुपाद जी अपने कई ऐसे गृहस्थ शिष्यों को लेकर लंदन गए, इंडिया आए और वहां पर उन लोगों ने वास्तव में इस्कॉन की स्थापना की। तो जो गुरुदास प्रभु हैं प्रभुपाद जी के साथ, गुरुदास और यमुना देवी अमृतसर में थे और वहां पे
एक बहुत बड़ा सम्मेलन था और हजारों के संख्या में वहां पर संत लोग आए थे, और फिर वहां पर कई मायावादी लोग बहुत कुछ अपना अलग अलग फिलॉसफी कह रहे थे, सब एक है, सब एक है, सब एक है। तो प्रभुपाद जी उठ के चले गए और प्रभुपाद जी ने गुरुदास प्रभु को कहा कि आप ही अभी लेक्चर दे दो, ये सब सुन के मुझे मूड ही नहीं आ रहा कुछ बोलने का, सब बकवास कर रहे हैं। तो गुरुदास प्रभु ने कहा, मैं तो नया हूं और ये लोग तो सन्यासी लोग बैठे हैं, इतने बड़े बड़े मायावादी लोग, मैं क्या बोलूंगा। प्रभुपाद ने कहा, तुमने मेरे से जो कुछ सुना है वो काफी है इनको डिफीट करने के लिए। तो गुरुदास प्रभु के पास जब माइक आया तो उन्होंने कहा कि आप लोग सब कह रहे हो सब एक है, सब एक है, लेकिन अब आप ही बताइए, रसगुल्ला खाने का पदार्थ है, रसगुल्ला को हम खाते हैं, और सड़क पर पड़ा हुआ जो विष्टा है वो विष्टा को कोई खा सकता है क्या? तो रसगुल्ला और विष्टा एक हो सकता है क्या? आप लोग सब कह रहे हो एक है, अरे एक को खाते हैं एक को नहीं खा सकते, तो कैसे सब कुछ एक है? तो उन्होंने जब इस तरह कहा सब लोग अवाक रह गए, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल किसी ने दिया ही नहीं, इतना भयंकर था। वो घबरा कर ऊपर आए, प्रभुपाद को कहने लगे, आपका शिष्य बड़ा खतरनाक एग्जाम्पल दे रहा है, हम लोग को ये स्वीकार नहीं, हम लोग सबको कह रहा है कि विष्टा खाओ। उन्होंने ऐसा इंटरप्रिटेशन किया। तो प्रभुपाद ने कहा, ऐसा कहा? तो प्रभुपाद ने कहा, चिंता मत करो, ये क्या है कि अभी मेरे सब नए नए शिष्य हुए हैं, अमेरिका से आए हैं, ये लोग को इतना ट्रेनिंग नहीं है, वो थोड़ा खतरनाक एग्जाम्पल देते हैं, है कि नहीं, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं उनको अच्छे से डांट के समझा दूंगा, आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया, आप चले जाओ। तो सारे वहां सन्यासी लोग मायावादी लोग सब चले गए। तो प्रभुपाद जी ने गुरुदास प्रभु को पूछा, क्या एग्जाम्पल दिया था? वो रसगुल्ला और विष्टा, उसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था प्रभुपाद ने कहा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो तो ये मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। तो वासुदेव दत्त को शिवानंद सेन के अंदर में रखकर महाप्रभु ने कहा, गृहस्थ होए न इहो चाहिए संचय, संचय न कोयले कुटुंब भरण नहीं। तो इसलिए अलग अलग आश्रम में अलग अलग उत्तरदायित्व होते हैं, लेकिन सबका मूल तत्व एक ही है, कृष्ण को संतुष्ट करना। तो इस प्रकार हम लोग इस प्रसंग से और इस श्लोक से, हिरण्यकश्यपु से ये सीखते हैं कि चाहे कितनी भी शक्ति और कितना भी बल क्यों न हो, लेकिन भक्ति के मार्ग पर अगर आगे बढ़ना हो तो वैष्णवों को सम्मान करना चाहिए, और अगर वैष्णवों का अपमान करेंगे तो संचित शक्ति और हृदय के अंदर संतोष का भाव और तृप्ति वो सब शनै शनै निकलने लगेगा, और कुछ समय के पश्चात हम पुनः विषय भोगों के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे। इसलिए जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, भगवत धाम जाना हो तो दो कार्य करना है, अटेंटिव चैंटिंग एंड अटेंटिव डीलिंग्स। नाम जप ध्यान पूर्वक हो और भक्तों के साथ आदान प्रदान, और सभी के साथ आदान प्रदान ध्यान पूर्वक हो, क्योंकि कल कौन भक्त बन जाए कोई भरोसा नहीं है, कि नहीं। तो इसलिए सबके साथ ध्यान पूर्वक आदान प्रदान करना चाहिए और नाम जप भी ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इस तरह करेंगे तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। जय श्री प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की।